दैट इज नॉट द ओनली रेटिंग फैक्टर. हम वहाँ मल्टीपल रेटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं, जहाँ पे आपको लगता है यार एरिया की प्राइस हाई आ रही है, फिर हम देखते हैं कि यार आपका लाइसेंस, आपकी एज क्या है, आपका लाइसेंस कितना पुराना है, आपकी पास गाड़ी कौन सी है, एज कौन सी है, क्या मल्टी व्हीकल अप्लाई हो रहा है, क्या स्टूडेंट डिस्काउंट आ रहा है, क्या रिटायरी डिस्काउंट आ रहा है, गाड़ी गैराज में पार्क हो रही है कि नहीं हो रही, विंटर टायर है कि नहीं. फिर हम मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर एक फैक्टर जो कि रेटिंग फैक्टर है जो आपके फेवर में, यू मे नॉट हैव दैट ऑन योर फेवर, बट ऑन दी अदर साइड जब आप वर्क करते हैं हम लोगों के साथ, कॉल करते हैं, कोर्ट लेते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि यार उनको हम ओवरकम करके एक मुनासिब चीज आपको दे सकें.
बहुत शुक्रिया राजा जी, अपना नंबर दे दीजिएगा. 4647
जी, 6472903773.
अच्छा एक मैं बोलती हूँ, आप बोले
6472903773.
हंसते रहो बोलते रहो बेटा, जिंदगी बहुत मरीज के साथ है, हम जैसा बंदा बाजू का था. आपको बहुत शुक्रिया राजा. बादशाह ऑल स्टेट के साथ है, ही इज इन चार्ज ऑफ देयर ऑफिस इन एजेक्स पिकरिंग के, ऑल स्टेट के ऑफिस के इंचार्ज हैं. एंड यू कैन सेव अ लॉट. ऑन्टेरियो में से कहीं भी आप कॉल कर सकते हैं, बल्कि अपने दोस्त अहबाब को जरूर नंबर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए. 6472903773. बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू.
बहुत शुक्रिया जनाब जी,
थैंक यू वेरी मच. राजा बादशाह से मैंने आपकी बातचीत कराई और मुझे ना अब मेरे साथ रहिएगा शुगुप्ता साहब, आप मेरे साथ रहिएगा. नवदीप मुझे आपकी जरूरत है बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉप वन कॉल. ठीक, एक चीज और आपको लेके जानी है, अभी अभी एक जो अरेस्ट हुआ है ये एरियल फुटेज है अमर बल की. अगर आप इस खबर को दिखाई दें तो बहुत अच्छी बात है. आप इमेजिन करें कि हाउ दिस यंग मैन वॉज ड्राइविंग हिज कार. अच्छा ये पिछले दिनों से ये मामला चलता चला आ रहा है, अभी उसकी नई एरियल फुटेज आई. आप गाड़ी का हाल देखें, गाड़ी के टायर बिल्कुल खत्म हो गए हैं. पहले उनकी टायर में से हवा निकली, टायर में से हवा निकली, ये गाड़ी को ऑपोजिट साइड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस में लेकर चला गया. पुलिस भी यहां पे आ गई और ये नीचे वाली कॉल को ड्रॉप करना है और ऊपर वाली रहे. उसके बाद फिर पुलिस ने इसको ये बेल आउट करने के लिए, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, तुम्हें हम कुछ नहीं कहते. 10 जुलाई को वो कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स ने नोट किया कि निसान कशका जो हाई स्पीड के ऊपर वुडबाइन एवेन्यू ऑन रिवर ग्लेन ड्राइव के ऊपर टाउन ऑफ जॉर्जिया में ट्रेवल कर रही थी. बहरहाल इसकी जब फुटेज दिखाई है व्हीकल को देखा जा सकता है कि ट्रैफिक की ऑपोजिट साइड पे जा रही थी. जब ऑफिसर्स ने इस गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो आदमी ने और ज्यादा स्पीड पकड़ ली, और भी ज्यादा स्पीड पकड़ ली. अब 10 जुलाई के बाद 7 दिन के बाद 17 जुलाई को यही गाड़ी को दोबारा वुडबाइन एवेन्यू और बॉयर्स रोड के ऊपर, यही वही मार्कम और उस जगह का इलाका है. ये जो लोग देख रहे हैं प्लीज इस गाड़ी को देखें. जब पुलिस ने इसका पीछा किया ना तो ऑपोजिट डायरेक्शन के ऊपर इस गाड़ी ने, और गाड़ी को बहुत तेजी के साथ इसने भगाया. यहां पे इन्होंने पुलिस के जो हेलीकॉप्टर्स थे उनको भी साथ में शामिल कर लिया गया. 17 जुलाई को द यॉर्क रीजन पुलिस के जो सपोर्ट यूनिट है उसको डिस्पैच किया गया, जिन्होंने गाड़ी का पीछा किया. साउथ पॉइंट हाईवे 404 के ऊपर ये गाड़ी चली, फिर 404 से इसने एग्जिट किया हाईवे 7 का, और फिर रिचमंड हिल पे ये गाड़ी आकर उतर गई. अब जहाज भी इसका तस्वीर बना रहे थे, बाकायदा फिल्म की शूटिंग हो रही थी. जो गाड़ी चलाने वाला था वो सेवरल रेड लाइट, मतलब गलती पे गलती पे गलती पे गलती पे गलती गलती, यानी टायर बस टायर की हवा निकल जाती है, उसके बाद फिर ये ऑपोजिट साइड पे चढ़ जाता है, फिर उसके बाद पुलिस आगे लगी हुई थी, लाल बत्तियां भी क्रॉस कर, विच इज अ बिग 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 प्रॉब्लम. पुलिस ने ये कहा है कि एक्चुअली जो उसके टायरों में से हवा निकली थी ना वो पुलिस ने उसके, क्योंकि वो गाड़ी रोक ही नहीं रहा था और डिफ्लेशन डिवाइस जो थी वो इस्तेमाल की थी, वो क्या गनशन मार के, गोली शोली मार के, उसकी बुलेट मार के, कील मार के उसकी टायर की हवा निकाल देते हैं. बहरहाल अब वो कहते हैं कि पुलिस ने कहा है कि ऑफिसर्स ने उसके टायरों में से हवा निकालने के बाद सस्पेक्ट को 4 अरोरा में इसने ट्रेवल किया. अभी मैं इस गाड़ी की तस्वीर देख रही थी, इट्स क्वाइट अनबिलीवेबल कि इसके रिम्स, उफ माय गॉड, यानी उस शख्स को डर नहीं लगा, इस गाड़ी को आग लग सकती थी. आपको पता है कि अगर लोहा जमीन के साथ रगड़ खाता है लुक एट द शोला, वो जो लोहे के साथ तेज स्पीड पे गाड़ी चला रहा था उसकी वजह से जमीन के ऊपर जो आग के शोले थे वो जो नजर आ रहे हैं अनबिलीवेबल। पुलिस ने कहा है कि ऑफिसर्स ने इसकी टायरों में से हवा निकाल दी थी मगर इस लड़के ने चारों टायर इसके फ्लैट हो गए, उसके बावजूद ये अपने रिम्स के ऊपर गाड़ी चलाता रहा। फुटेज जो पुलिस ने रिलीज की है स्लोली रॉन्ग डायरेक्शन के ऊपर गाड़ी को चलते हुए देखा भी जा सकता है। थोड़ी देर के बाद पुलिस बॉक्सिंग इन द व्हीकल अगेंस्ट द गार्डरेल एंड टेकिंग द ड्राइवर इनटू द कस्टडी। अल्टीमेटली पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पुलिस सेड उन्होंने द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सेफ्टी ऑफिसर मेड इंटेंशनल कॉन्टेक्ट टू स्टॉप द व्हीकल। अगेन अब याद है आप ये लुक एट द रिम्स। मैं कहती हूँ आफरीन है इस आदमी के ऊपर कि ये क्यों इस गाड़ी को चला रहा था। अब देखें क्या होता है इस शख्स के साथ। और गाड़ी के रिम्स में आग निकल रही थी। अब लेट्स सी, इसका है डकोटा ड्रूरी 21 साल की इसकी उम्र है, नॉर्थ बे से ताल्लुक रखता है। 15 चार्जेस इसके ऊपर रखे हैं जिसमें मजे की बात ओ माय मर जवां फायर आर्म्स भी इसके पास से निकल आए। चलिए ये तो थी एक बातचीत, आइए अब आपकी एक मुलाकात कराते हैं। शुगुफ्ता साहिबा मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
जी, बताइए अपने इवेंट के बारे में बताइए।
जी, इवेंट से पहले मैं आपको आपके बारे में लता ने आपको बहुत ही अच्छी स्लाइडों से नवाजा है। माशाल्लाह आप बहुत कूल वे में जो ना क्वेश्चन आंसर करती हैं। अभी मैं राजा पाशक जो आपकी गुफ्तगू थी वो सुन रही थी। माशाल्लाह मतलब कितने कूल वे में आपने सारी प्रेजेंट सिचुएशन उनके सामने रखकर उनसे पूछा है कि किस तरह इंश्योरेंस जो है ना वो काम करेगी। यहाँ खैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इंसान दोस्त जो है ना वो सबसे बड़ी चीज है, बिजनेस तो बाद में आती है। जी अब मैं आती हूँ मकसद पर कि मेरा ताल्लुक जो है वो इकना से है, इस्लामिक सर्कल ऑफ नॉर्थ अमेरिका। सो इस दफा हम टोरंटो के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं मुस्लिम हेरिटेज डे के हवाले से। और ये इवेंट जो है अगस्त 2 को 12 PM टू 8 PM है। ये इवेंट पब्लिक के लिए 12 PM टू 8 PM है, ये फ्री है। और इसका एड्रेस जो है वो है अल्बर्ट कैम्बल स्क्वायर 150 बोरो ड्राइव स्कारब्रो ऑन्टेरियो M1P और 0B B4Boy 1। और ये इसमें हमें स्पॉन्सरर्स की बहुत जरूरत है और स्पॉन्सरर्स के लिए जो है ना कॉन्टेक्ट नंबर है ब्रदर अखलाक शेरवानी साहब का, जिनका नंबर है 416-999-7794। उसके अलावा हमें वेंडर्स भी चाहिए क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल इवेंट है। तो इसके अंदर अब वेंडर्स भी होंगे तो जो भी मतलब जितने ज्यादा वेंडर्स हों वो आए क्योंकि ये एक बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है आपको अपनी बिजनेस को यहाँ प्रमोट करने के लिए। और चीजें जो भी सेल ऑन परचेज होती हैं वहाँ पर चूंकि पब्लिक बहुत बड़ी तादाद में आ रही है तो आप लोगों की बिजनेस के लिए एक अच्छा एटमोसफियर है। तो वेंडर कॉन्टेक्ट के लिए ब्रदर एजाज हुसैन से बात करिए, उनका नंबर है 6478988977750। तो मेरी दरख्वास्त आरफा मुजफ्फर के इस टीवी और रेडियो के हवाले से तमाम आपके सुनने वालों को ये दरख्वास्त है कि आप टोरंटो मुस्लिम हेरिटेज डे जो अगस्त 2 को है उसमें जरूर तशरीफ लेकर आइए। आप सब लोगों को जो है वो इसमें जो है मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब अलाउ यानी एवरीवन वेलकम। तो इसमें आप लोग इसमें जो है वो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्शन है, बड़ों के लिए बहुत ज्यादा है, इसमें राइड्स हैं, इसमें बहुत यानी वो हैं कल्चर एंड हिस्ट्री इवेंट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी सेलिब्रेशंस हैं और दिलचस्पी के बहुत सारे सामान हैं ये इसके अंदर। तो बस ये कि आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इसमें तशरीफ लेकर आइए। और ये इसका एड्रेस मैं एक बार फिर आप लोगों को बता देती हूँ, ये है स्कारबोरो टाउन सेंटर से सब लोग वाकिफ हैं तो वहीं उसी के साथ सिविक सेंटर है। तो सिविक सेंटर के साथ ही ये अल्बर्ट कैम्बल स्क्वायर है जो 150 बोरो ड्राइव पर है। जजाकल्लाह खैर, ये इन्फॉर्मेशन
मैं इसको मुझे दो तीन चीजों पे बड़ी हंसी भी आ रही थी। स्कारब्रो टाउन सेंटर के सामने एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड के सामने एल्बर्ट टाउन हाउल है, अगर कोई एक चीज भी आगे पीछे हो गई तो सारा का सारा मामला गड़बड़ हो जाना है। नंबर एक,
स्कारब्रो टाउन सेंटर एक्चुअली ना मेन प्लेस है जिसको सब लोग जानते हैं, लेकिन स्कारब्रो टाउन सेंटर की एंट्रेंस और पार्किंग जो है ना वो डिफरेंट है, और सिविक सेंटर जो है ना वो दूसरे साइड में मेन एरिया है, तो बिल्कुल उसी के साथ ये मुल्हक है, ये अटैच है अल्बर्ट कैम्बल स्क्वायर। सिविक सेंटर भी सब लोग जानते हैं, जैसे स्कारब्रो टाउन सेंटर को जानते हैं इस तरह सिविक सेंटर, लेकिन स्कारब्रो टाउन सेंटर जो है वो एक शॉपिंग एरिया है, बिजनेस एरिया है।
तो इसका मतलब है इसका ना ताल्लुक इसके क्लोज टू स्कारब्रो टाउन सेंटर, मगर अल्बर्ट कैम्बल स्क्वायर के ऊपर ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इकना हैज ऑलवेज यूज्ड आवर प्लेटफॉर्म 770 का एंड दे एग्जैक्टली नो व्हाट हाउ इट इज। एक चीज मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट जरूर करना चाहती हूँ, और मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ, मैंने कपड़े की दुकान शुरू की, ठीक, तो कपड़ा तो मुझे खरीदना पड़ेगा ना
जी,
कपड़ा खरीद के कपड़े की दुकान शुरू करूंगी, आपको वेंडर्स की जरूरत है। मेरी आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप लोग रेगुलर ग्राउंड के ऊपर टोरंटो के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बाकायदा एडवर्टीजमेंट प्ले करें, ये इट वर्क्स, क्योंकि नाउ द टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हुई है, और मैं नहीं चाहती कि हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो कम्युनिटी की हेल्प भी कर रही हैं वो किसी तौर पे भी पीछे रहें। अब तो मार्केटिंग के लिहाज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, ये जो डिजिटल मीडिया को हायर किया जाता है बाकायदा, एंड इट कॉस्ट अ लॉट। तो मैं आप लोगों को, जाहिर है उसमें आपको वेंडर्स भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, मगर टोरंटो मुस्लिम हेरिटेज मंथ की ग्राउंड के ऊपर ये प्रोग्राम है, दैट इज 2 अगस्त को है, अल्बर्ट कैम्बल स्क्वायर पे ये प्रोग्राम होगा, इकना सेंटर ये प्रोग्राम करवा रहा है, इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रोग्राम को करा रहा है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इकना इज नॉट ओनली कनाडा का इकना, इकना इज नॉर्थ अमेरिका, इकना इन अमेरिका, इकना इन कनाडा, इकना के स्कूल्स बेहतरीन स्कूल्स हैं जहां लोग ख्वाहिश से एडमिशन लेते हैं, तो उसी इदारे के तहत ये प्रोग्राम हो रहा है, और आप राब्ता कर सकते हैं 6478897750 पे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इकना की हमारी एक सिस्टर ने आपसे बात की, शगुफ्ता साहिबा इनका नाम है, अल्बर्ट कैम्बल स्क्वायर पे प्रोग्राम है, बस सारे आसपास है, स्कारब्रो टाउन सेंटर भी करीब है, एक सिविक सेंटर भी करीब है, मगर आपने कहाँ जाना है, आपको नजर आ जाएंगे मेरे जैसे शलवार कमीज वाले सारे के सारे, भाव जहां सारे एंटर हो आप भी चले जाइए, पीरियड, ठीक। तो जाना मगर कब है, 2 अगस्त को, 2 अगस्त को जाना होगा। थैंक यू वेरी मच, ये तो थी एक सूरत हाल जो मैंने आपके साथ शेयर की। हमारी बहुत अच्छी बहन है जिन्होंने आपके साथ मैसेज को शेयर किया, ये हेरिटेज मंथ है, आपने 2 अगस्त को मार्क कर लेना है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं तो बस फंस जाती हूँ, ना टेलीफोन चलाना आता है ना बंद करना आता है, ओ माय गॉड, अशर अजीम मेरे साथ आने के हैं, थोड़ी देर में आने के हैं, मगर चंद एक स्पॉन्सर्स विल कम बैक, प्लीज स्टे ट्यून्ड।
Mosaic Festival, presented by TD Ready Commitment. Join us on August 1st and 2nd at Mississauga Celebration Square, bringing to you the largest South Asian artist lineup of the year. The amazing I'm a Big from Coke Studio, Apache Indian featuring DJ Raj, Chorsta Band, Mikhail Hassan featuring Shahzad Ali Khan Kaval, your host, actor and director Ali Kazmi, Nitin R. Mirani, and many more exciting local talents. Children's arts and crafts workshops, South Asian cuisine by 15 popular restaurants, Vendors Bazaar bringing South Asian clothes and jewelry, completely free admission. For details, visit mosaicfest.com.
इंटरनेशनल पंजाबी स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब बड़े मान नाल पेश करदे ने 32वां कैनेडा कबड्डी कप 2025 जिस विच चोटी दीआं 6 टीमां विच चोटी दे कबड्डी दे खिडारी खेडणगे। कैनेडा कबड्डी दे इतिहास विच पहली बारी कैनेडा कबड्डी कप किचनर ओंटारियो विच होण जा रहा है। किचनर मेमोरियल ऑडिटोरियम विच होणगे 9 अगस्त दिन शनिवार नूं साना दे भेड़ वजणगीआं थापियां ते कबड्डी दी होवेगी सिफर। टिकटां $55, $75, $100 ते VVIP। किसे किसम दी जानकारी लई 647-988-0034 ਸੈਂਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ 416-276-1337 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2025।
ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਵੀ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ।
ਹਾਂਜੀ, ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰਿਜ, ਸਟੋਵ, ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, 3-ਪੀਸ ਕਿਚਨ ਬੰਡਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰੰਟ ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਰ ਐਂਡ ਡਰਾਇਰ, ਐਨਰਜੀ ਸੇਵਰ, ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਰ, ਤੇ ਟੀਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀ, ਸੈਮਸੰਗ, ਪੈਨਾਸੋਨਿਕ, ਸ਼ਾਰਪ, ਹਰ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਟੀਵੀ ਵਿਦ ਦ ਲੋਏਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਦ ਟਾਊਨ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ ਤੇ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਂਸਿਸ, 801 Bowie Drive West, Brampton, ya call karo 905-450-2828, 905-450-2828.
ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਵੀਰੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਟਰੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂਅਲ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ, ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ ਚੇਤੇ ਆਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਟਰੱਕ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ। ਲਓ ਜੀ, ਤੀਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਖੋਲਤੀ ਆ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401। ਆਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਐਗਜ਼ਿਟ 579 ਫਰੋਮ ਹਾਈਵੇ 401 ਇਨ ਨਾਪਨੀ। ਕੁਇਕ ਟਰੱਕ ਲਿਊਬ, ਦ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ, 519-622-0660 ਜਾਂ quicktrucklube.com, QTL, because we care.
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਲਈ ਨੋ ਵਿਆਜ,
142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, 9058747171।
ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਕੈਲਵਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਿਖਰੇ ਪੌਦੇ, ਮਿੱਟੀ, ਗਮਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਲਵਿਨ ਸਬਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। 12050 ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ, ਕੈਲਡਨ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ 905-840-9000, 905-840-9000।
ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸੇਵਿੰਗ $400 ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ $350।
ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਰਫ $100।
ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਸੇਵ ਕੀਏ ਹੈ $1,775।
ਕਿਆ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਆ, ਮੁਝੇ ਵੀ ਗੁਰ ਸਿਖਾਓ ਨਾ।
ਕੋਈ ਬਾਤ ਸਾਦਾ ਸੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਦੋ ਗਾੜੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਸਭ ਕੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮਿਲਾ ਕਰ ਮੈਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੇਵਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਹੈ ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾੜੀ ਔਰ ਘਰ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਖੂਬ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰ ਸਕਤੇ ਹੈ। ਟਰਮ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ, ਆਲ ਸਟੇਟ ਪਿਕਰਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਾਸ਼ਾ,
6472903773। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ 770 AM ਡਾਇਲ ਪਰ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਆਪ IP ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਯੂਟਿਊਬ ਸੇ ਲਿੰਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਕਿਆ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਉਪਰ ਟੀਵੀ ਏਕ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ, ਵੋ ਵਾਲਾ ਸਫਾਰੀ ਲਿੰਕ ਵਾਲਾ ਵੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ eawaz.com ਗੂਗਲ ਕਰੇ, ਰੇਡੀਓ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਭ ਕੁਛ ਆਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਕੇ IP ਬਾਕਸ ਹੈ, ਵਿਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਜ਼ ਇਟ ਨਾਓਡੇਜ਼, ਤੋ IP ਬਾਕਸ ਪੇ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਆਫਕੋਰਸ ਯੂ ਜਸਟ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਉਰਦੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਔਰ E770M ਈ ਆਵਾਜ਼ ਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ। ਇਟਸ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਹਮ ਵਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਨਵਿੰਸ ਐਨੀਬਡੀ, ਮਗਰ ਜਬ ਇਸਕੋ ਨਾਮ ਇਸਕਾ ਈ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਾ ਥਾ, ਤੋ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੌਜਿਕ ਬਿਹਾਈਂਡ। ਆਪ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੋ ਖੈਰ ਇਤਨੀ ਅਕਲ ਔਕਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟਸ ਅੱਲਾਹ, ਯੇ ਸਭ ਤੁਹਾਰਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਆਕਾ ਕੇ ਬਾਤ ਅਬ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਕਦੀ ਲੋਗੋ ਦੇਖੇ AZ Amazon, ਯਾਨੀ AZ A to Z, ਆਪ ਫੈਡਕਸ ਕੀ ਕਭੀ ਆਪ ਲੋਗੋ ਦੇਖੇ, ਫੈਡਕਸ ਮੇ ਜੋ F ਕਾ ਲਾਈਨ ਹੈ ਵੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੋ ई आवाज जब आज से 28 साल पहले इसका नाम रखा था तो उस जमाने में ई मीडिया ई डॉक ऐसे तो हमें बड़ा भूलने की आदत है। अभी अशर अजीम मेरे साथ आने के हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिकन दे आर सो नईव स्वीट पीपल, उनको इतना नहीं याद कि 2020 में हु वाज द प्रेसिडेंट, देर आर सर्टन अपॉइंटमेंट जो डोनाल्ड ट्रंप ने की थी तो वो कहते हैं नहीं मैंने नहीं की थी, वो बाइडन ने की थी। ये है टेंडेंसी टू रिमेम्बर थिंग्स। 2009 में हु वाज द प्रेसिडेंट, दिस इज व्हाट द टेंडेंसी इज। तो ई आवाज इलेक्ट्रॉनिक आवाज से है क्योंकि हमारा आवाज का रिश्ता आवाज की लहरों पे इलेक्ट्रॉनिक वेव्स के जरिए, चाहे वो हमारा न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, चाहे हमारी टेलीविजन देखते हैं या रेडियो देखते हैं। eawaz.com। आशर अजीम साहब एनी मिनट मेरे साथ यहाँ पे शामिल होंगे और हो भी गए हैं। आशर अजीम साहब सर अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू?
सलाम, सॉरी मैं लेट हो गया, कनेक्ट होने प्रॉब्लम हो रही थी। तो आप कैसी हैं?
मतलब कहते हैं ना जब लड़कियां पैदा होती हैं हम तो बेचारी गुड़ियों से ही खेल खेल के मर जाती हैं। जब लड़के पैदा होते हैं ना या तो वो गाड़ियों के साथ खेलते हैं या वो कोई टेक्निकल काम, तो बाजी कहते हैं इन्ने वड्डा हो के इंजीनियर बनना है, हले देखो हूं तो ये चीजा सही कर दा। तो मुझे तो टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकती है बिकॉज आई वॉज रेज एज अ गर्ल, तो यू वर रेज एज अ बॉय मैन, तो आपको आज टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आई?
कोई समझ नहीं आ रही, वो कह रहा था तो लिंक है कि मैं आपके फोन पे टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ, कोई कोड भेजना चाह रहा था, वो जब आपको मैं चेक कर रहा था वो कोड आता ही नहीं है, सो मैसेज में कोड नहीं आता, फिर बार बार ट्राई करता था, फिर अल्टीमेटली मैंने लैपटॉप को शिफ्ट किया बट इट डिड टेक मी सम टाइम बिकॉज आई कुडंट कनेक्ट विद। बस की करिए जी, कोई नालायक लड़के भी तो होते हैं ना जिनको काम नहीं आते।
मैं आपके बारे में ये कह सकती हूँ प्राइड ऑफ आर कम्युनिटी, नो डाउट अबाउट इट सर। सर मैं आज आई विश के मैंने आपसे कम्युनिकेट नहीं किया बिकॉज आई वाज लिटिल कमिटेड हियर एंड देयर। आज की दो न्यूज जो हैं दोनों एस्टॉनिशिंग न्यूज हैं। नंबर वन, मेहदी हसन जो अमेरिकन एंड ब्रिटिश दोनों की सिटीजनशिप उनके पास है, एमएनएसपीसी ने उनका, मैंने आज के उस पर प्रोग्राम भी किया कि उस शख्स ने अपने 25th जो सिल्वर जुबली थी उस पे ही वाज उसने मुबाहिसा किया राइट विंग के लोगों के साथ एंड दीज वर द यंग पीपल, जिसमें उसने महसूस किया है कि पीपल दे डोंट लाइक द कलर्ड स्किन एंड दे वांट देम टू लीव। एंड आमिर ने लास्ट फ्राइडे को एक यहां पे सब्जेक्ट को कवर किया था कि आज से क्योंकि सिखों ने बहुत अरसा पहले इंडिया को छोड़ा था और दे वेंट अब्रॉड, तो जो साल सदियों पहले सिखों ने जो प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त किया था आज आर सेम, क्योंकि उस जमाने में भी लोग ये कहते थे कि ये कम वेजेस के ऊपर काम करते हैं, ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ये तो आज भी वही सूरत हाल है। और व्हाट एन एलीट एंड अ फाइन पर्सन, उसको जो क्रिटिसिज्म हुआ है इसमें, आई बिलीव यू हैड अ चांस टू वॉच इट। इसके साथ साथ देर इज अ सेकेंड इवेंट, चूंकि इंग्लैंड में एक पोल्स किए गए हैं और जमात अहमदिया के लोगों ने ये पोल्स किए, फरहाद साहब हैं जिन्होंने इसके स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने कहा कि 41% पीपल, और इस दफा हिजाब के टॉपिक को शामिल किया गया था। एंड वंस मैं इंग्लैंड की बात कर रही हूं, अगर आप फ्रांस की बात करें तो वो हिजाब को बहुत बड़ा एक मसला कि औरतों को बैकवर्ड रखा जाता है, ये जबरदस्ती किया जाता है, आदमी यानी एक रिलीजन को गलत पोर्ट्रे किया जा रहा है। तो वहां पर उन्होंने कहा कि जो मुसलमानों को दे डोंट वांट मुस्लिम टू स्टे इन दीज कंट्रीज, नंबर हैज गॉन अप 41%, वेयर एज फॉर द क्रिश्चियन इट इज 7%, फॉर सिख्स इट इज 14% एंड फॉर हिंदूज इट इज 15%। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो अमेरिका में जो ये यूट्यूब के साथ राइटिस्ट लोगों का ये जो हुआ है उसमें जितने ये लोग आए हैं, बाज तो इंतहाई नेगेटिव ख्यालात के हामिल थे एंड आई थिंक सो दे ऑल आर प्रमोटिंग डोनाल्ड ट्रंप्स एजेंडा और डोनाल्ड ट्रंप इज प्रमोटिंग देयर एजेंडा बीइंग रेडनेक।
मैंने बिल्कुल जी मेहदी का वो प्रोग्राम देखा और बड़े इन हमाक से देखा और बहुत से लोगों के साथ देखा. सो मेहदी वॉज डूइंग 1 to 20 वो राइट विंग के लोग थे और मेहदी उनके साथ मुबाहसा कर रहा था.
अब बड़ा एब्रप्टली आखिर में इस प्रोग्राम को बंद किया गया
जी. और सर लॉजिक पे स्टेटिस्टिक्स पे इंफॉर्मेशन के हिसाब से तो उनके पास कुछ भी नहीं था कहने का जो जो राइट विंग लोग थे. एंड मेहदी उनको हर बात पे मेहदी वॉज एब्सोल्युटली राइट. और जहर है जितना वो ठीक था उतना ही दूसरों को गुस्सा आता था क्योंकि आज की दुनिया अनफॉर्चुनेटली है ही इसी तरह कि वो मेरिट पे बात नहीं करती, वो लॉजिक पे बात नहीं करते. उन्होंने एक कल्ट लीडरशिप है ट्रंप साहब की, एक ट्राइबलिस्टिक इंस्टिंक्ट है कि जी उसमें आपने सुना हो कि जी वो एक लड़का जो वो कह रहा था उसने कहा कि जी तुम इमिग्रेंट हो. उसने कहा कि भाई मैं नेचुरलाइज्ड हूं, मैं अमेरिकन हूं. वो कहते हैं तुम अमेरिकन नहीं हो सकते. वो कहता है कि भाई मैं क्यों अमेरिकन नहीं हो सकता, तुम्हारे पेरेंट्स इमिग्रेंट थे, नेचुरलाइज्ड ही होंगे ना, तुम रेड इंडियन, सॉरी मैं हमेशा फिर वो कलर टर्म यूज करता हूं, तुम नेटिव अमेरिकन इंडिजिनस नहीं हो. ठीक है जी. वो कहते हैं नहीं, व्हाइट पीपल आर नेटिव टू यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. अब उसका लॉजिक, उसकी बातें, लेकिन वो नफरत, वो हेट्रेड आप वहां पे देख सकते थे. असल में बात यह है कि जी हम अपने अपने ममालिक छोड़ के आ जाते हैं, हम अपनी रूट्स छोड़ के आते हैं, ये सोचते हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जो दुनिया हमारे हमारा इर्द गिर्द जो माहौल है, जैसे पाकिस्तान में था फर्ज करें, पाकिस्तान में भी कोई बहुत अच्छा माहौल तो नहीं था, तो हम में से बहुत से लोग पाकिस्तान को छोड़ के फॉरेन लैंड्स पे इमिग्रेट हुए थिंकिंग के जी यहां पे ज्यादा एक लिबरल एनवायरमेंट है, यहां पे ज्यादा एक्सेप्टेंस है, यहां पे ज्यादा राइट्स है, और बहुत सारी चीजों में है. मतलब ये इसमें हमें वो नहीं करना चाहिए कि जी मैं कोई, लेकिन शायद बेहतर ये होता कि अगर आज भी हम रियलाइज करें या उस वक्त भी हम रियलाइज करते कि अगर हम अपना हां अपने हां चीजों को ठीक कर लें तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन है बनिस्बत किसी दूसरे मुल्क जाके ये एक्सपेक्ट करना कि वहां पे चीजें ठीक होंगी. तो उसमें हमारी भी बहुत सारी गलतियां हैं, हमारे लोग भी ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं. आपने कनाडा में भी अपने इर्द गिर्द देखा होगा, आपने बर्तानिया में भी देखा है. एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट मुस्लिम्स. आई थिंक के रिलीजन, मेहदी की मैं एक बात सुन रहा था और मुझे बड़ी पसंद आई. आप देखें कि जी आर्ग्यूमेंट को इस तरह फ्रेज नहीं करना चाहिए रिलीजन पे. वो ये कहते हैं, बात ये हुई कि जी जब आप इसराइल की तनकीद करें तो लोग आपको कहते हैं कि आप एंटी सेमेटिक हैं, आप जूस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं. भाई तो मेहदी ने बात की, कहते हैं जब आप ये कहते हैं कि जी फिलिस्तीनियों को मार रहे हैं या हमास को मार रहे हैं तो आप ये थोड़ी कहते हैं कि जी हम मुसलमानों को मार रहे हैं. जब हमास या फिलिस्तीनियों की बात होती है तो तब आप रिलीजन से हट जाते हैं और उनको आप कहते हैं कि ये फिलिस्तीनी ऐसे कर रहे हैं और हमास ऐसे कर रहे हैं. जब हम इसराइल को क्रिटिसाइज करते हैं तो आप कहते हैं कि जी आप यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हैं. ठीक है जी. तो इशू ये है, और ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था उस पर लोगों को भी बुरा भी लगा था. आपको याद होगा कि लंदन में वो एक लड़के ने ट्रक में बैठ के एक मुस्लिम फैमिली थी उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी. तो मेरा वहां पे ये कहना था कि भैया वो जो जो जहालत है, जो इस तरह का राइट विंग है, और वो यकीनन है और वो जाहिर बढ़ता भी जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक हालात खराब हो रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि आप मुसलमान हैं, कि आप हिंदू हैं, कि आप कौन हैं. अगर आपकी शक्ल, आपका लिबास मिलता है, वो ये आप सिख होते हैं, उसने आप पे चढ़ा देना था. अगर मेरी वालदा, मेरी बहन, मेरी बेगम, मेरी बेटी बाहर जा रहे होते तो उन्होंने भी इसी तरह के कपड़े पहने होते, वो उन पे भी इसी तरह गाड़ी चढ़ा देता. उसको आपके रंग से और आपके लिबास से और आपके तर्ज से, अब ये लिबास वाली बात आपने जाहिर है इसमें हिजाब के उस पर की, और एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. आप ये देखिए कि आज से, आज भी अमेरिका में जो सबसे बड़ी काइंड ऑफ गाली समझी जाती है वो एक है जी तुम कम्युनिस्ट हो. you're a commie or a socialist, जैसे जोरान मंदानी पे को एक्यूज किया जा रहा है, तो आप चाइनीज को उनके ड्रेस कोड पे कि यार ये किस किस्म का मुल्क है, इसमें सब लोग एक जैसे कपड़े पहनते हैं फलाना, तो ये कानून कैसे किसी का ड्रेस एस्क्राइब कर सकता है? आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कपड़े पहनते हैं, जो खवतीन कपड़े पहने, जो मर्द कपड़े पहने, आप ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि कोई क्या लिबास पहनता है। अगर किसी ने कोई कानून नहीं तोड़ा तो इट डजंट मैटर कि वो क्या लिबास पहन रहा है, उसका क्या रंग है, उसका क्या उसकी एक्सेंट कैसी है। तो इट हैज टू बी लॉ एंड दैट एप्लीकेशन ऑफ लॉ एंड दैट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसके बाद आप किसी को जज करेंगे या कंडेम करेंगे। लेकिन ये मेहदी के शो में इट वॉज एब्सोल्युटली क्लियर कि आपको जितनी भी मर्जी जनरेशन हो जाए इन ममालिक में, तो एक तरह से वो हेटरेड। और मेहदी ने तो कुछ नहीं किया ना जी, मतलब चले बाकी हम मान लेते हैं कि जी कोई हमारे लोग थे, हमारे लोग से मतलब पाकिस्तानी इंडियन में इंडियन थे, हालांकि वो कि जी बीच पे जनाब वो जाके यू नो ओपन एयर हरकतें करते हैं, ठीक है। अब जाहिर है दिस विल ब्रिंग अबाउट हेटरेड इन द लोकल पॉपुलेशन की यार ये किस किस्म के जाए लोग हमारे पास आ गए, लेकिन मेहदी तो वो कैटेगरी में नहीं है। बट पीपल डोंट केयर व्हेन दे सी, और ये मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी स्किन आपका पासपोर्ट है, आप अपने पूरे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको आपको याद होगा कि एक दफा मैंने गुजारिश की थी कि मैं होम डिपो में एक किस चीज की कोई छोटी सी चीजें थी, मैंने डोर की पेमेंट कर दी और जो मेरी जेब में कोई एक आध कब्जा रह गया था वो मैं पेमेंट करना भूल गया, किसी ने मुझे नहीं पकड़ा। मैं जब गाड़ी पे पहुंचा तो मैं वापस आया, लाइन में खड़े होकर मैंने उसकी उसको पेमेंट की, तो जो मेरे पीछे एक लाइन थी व्हाइट लोग थे। सो आपकी हर हरकत आपकी कम्युनिटी आपके मुल्क का एक पासपोर्ट है, और आप जो हरकत करेंगे वो आपकी सारी कम्युनिटी पर अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करेगी। सो बट Nonetheless, there is a tribalism. It is getting worse. And अपने मुल्क के साथ loyalty और वहां के हालात ठीक करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहां पर बहरहाल आप जितने भी पुराने हो जाएं किसी न किसी स्टेज पे मसला यकीनन होता।
बहुत शुक्रिया। जब आपने ये बात की तो रेसिज्म की बात अगर हम, और वो आज की जो एक और रिपोर्ट आई है, चाहे वो बरतानिया में हो चाहे वो जर्मनी में हो, वो कहते हैं दिस रेसिज्म इज ट्रेवलिंग फ्रॉम अमेरिका की तरफ से। अमेरिका बहुत ज्यादा वोकल हुआ हुआ है और वहां के जो प्रेसिडेंट के जो रवैया है, और अगर आप यहां के मेन स्ट्रीम चैनल्स देख लें, क्योंकि चाहे वो ममदानी की बात हो या जिसकी भी बात हो, या वो जो एक खातून लगे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी कहा कि मैं उसको डिपोर्ट कर दूंगा, तो किसी ने सवाल किया, आई थिंक सम अमेरिकन जिसने और बड़ा रेनाउंड पर्सन है, उसने कहा तो ही मस्ट डिपोर्ट हिज वाइफ फर्स्ट, मेलानिया ट्रंप, शी केम विद द रेफ्यूजी विद वन सूटकेस।
तो लेकिन वही वाली बात है ना कि इट्स अबाउट वाइट, इट्स नॉट अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ समथिंग, it's about the color of your skin, which is a problem, right? So and aur khair ye hame bilkul clearly andaaza tha ek aur specially jo aapka mainstream media hai us pe, mainstream media ek particular zionist lobby ke control mein raha hai aaj tak, aur unko is baat pe bahut takleef thi ki america aur europe mein bahut huge agitations hui palestine issue pe, aur the Palestine issue is going to change the world. तो उसके बाद से उनके अपने अंदर उन्होंने जिस तरह अपनी यूनिवर्सिटीज पे क्रैकडाउन कर रहे हैं, and let's not, it's not only about the color of the skin, it is overall a fascism which is descending on the world. आप ये सोचें ना, हार्वर्ड के साथ क्या हो रहा है, कोलंबिया के साथ क्या हो रहा आप कि आपके अपने जो क्या कैनेडी सेंटर है जो कि आर्ट्स एंड उसका एक एक, एक गढ़ था, उसके साथ क्या हो रहा है आपके। सो इट जाहिर है इट इज एज यू गेट टू कलर इट गेट्स मोर एंड मोर फोकस्ड, बट ओवरऑल इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ ड्यू प्रोसेस। ये बात शुरू हुई थी कि मैं इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप से, और अब वो यहां तक पहुंचे हुए हैं कि वो कहते हैं मैं सिटीजन को भी डिपोर्ट करूंगा। अब वो सिटीजन से भी आगे, सो बेसिकली तो बात वहां जाके पहुंचती है कि जी वो कहते हैं ना कि क्या बड़ा जबरदस्त शेर है, वो कहता है कि जी बड़ा संगीन मुजरिम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। सो जिस भी शख्स की सोच आपकी सोच से मुख्तलिफ है उसे मसलूब कर दिया जाए, क्योंकि इस सोच की जो का जो इख्तलाफ है वो सबसे खतरनाक होता है और ये वेस्ट बर्दाश्त नहीं कर पा।
माजरत के साथ आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो इनकम डिस्पैरिटी इज द मेन रीजन, अमेरिका में जो आदमी इस वक्त राइटिस्ट लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, देयर इज अ रीजन, बट ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू सपोर्ट द रिच पीपल, इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट द पुअर्स। अमीर आदमी को तो गरीब की भूख का अंदाजा भी नहीं है। एक म्यूजिशियन है सर, कनाडा पाकिस्तान में हमने ये रेसिज्म देखा था, हमने और जगहों पे देखा था कि एक मजहबी जमात आती है वो कॉन्कर करती है। आज की बड़ी हेडलाइन है, आपको पता ही है कि ये शान फ्यूजेट जो एक म्यूजिशियन है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के कॉन्सेप्ट पे है, एग्जैक्टली उसी पॉलिसी के साथ है जो रेड नेक जो है उनकी पॉलिसीज की तरवीज चाहता है, दे आर अगेंस्ट वैक्सीनेशन। अभी पिछले दिनों परसों वीकेंड के ऊपर मॉन्ट्रियल में उनके प्रोग्राम्स थे, कैंसिल करवाए। आज सीबीसी का एक स्टेटमेंट है इसके ऊपर कि ख्याल किया जाता है कि ये जो कॉन्सर्ट्स का कैंसिलेशन है, दिस माइट क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन द कैनेडियंस, क्योंकि जो चर्चेज वाले हैं, अच्छा वो अपने आप को खुदा का पैगाम, जीसस का पैगाम देने के लिए थे, चर्चेज वाले ये लोग उनके फॉलोअर्स भी हैं, दे आर अगेंस्ट अबॉर्शन, दे आर अगेंस्ट एलजीबीटी कम्युनिटी, दे आर अगेंस्ट वैक्सीनेशन, एग्जैक्टली सेम उनका एजेंडा है वो जो मेगा का डोनाल्ड ट्रंप का है। वीकेंड के ऊपर प्रॉब्लम आई थी मॉन्ट्रियल में, एंड नाउ विनीपेग में भी उनको जगह नहीं दे रही, जिसमें आज का सीबीसी की रिपोर्ट है कि इट माइट क्रिएट अ रिफ्ट अमंग द कैनेडियंस।
आपने दो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स असल में इसमें छेड़े हैं और मेरा ख्याल है कि मैं इनमें से दोनों पे फोकस करना चाहूंगा। आपने पहली बात की कि जी अमेरिका में ये जो राइट साइड की तरफ ड्रिफ्ट है, ये ड्रिफ्ट बेसिकली इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। आप जाहिर है जब यंगस्टर्स को नौकरी नहीं मिल रही, उनको घर नहीं मिल रहे, उनको वो नहीं मिल रहा, जॉब्स अपने पेरेंट्स से वो कम पीछे रह रहे हैं, तो वो जो अमेरिका में एक इकोनॉमिक जो अमेरिकन ड्रीम जिसे कहा जाता है, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, वो जैसे जैसे जा रही है तो जाहिर है वो गुस्सा अब उनको इमिग्रेंट्स पे नजर आता है। हालांकि इमिग्रेंट्स ने, जैसे आपने मेहदी के शो में देखा, उसने आपको कहा कि स्टेटिस्टिकली तो इस वक्त सबसे कम है अनएम्प्लॉयमेंट है यूएस में, और बहुत सारी चीजें, बट लेट्स काइंड ऑफ एड्रेस दिस। एंड ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो आपने वर्ड यूज किया के जी, बिल्कुल ठीक है, वजह यह है। अब ब्लेम आप किसको कर रहे हैं? मसला ये है कि ये जो जाहिल टाइप के लोग होते हैं जो कि इन बेसिस पे फंडामेंटल लेयर तो वो जहालत की है ना जी, जो अब रेस के बेसिस पे लोगों से बायस्ड होते हैं या फलाने होते हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है कि वो डिजीज को समझ सकें, और मेन स्ट्रीम मीडिया का काम ये है कि उनको डिजीज ना समझ आए, उनको किसी और के पीछे लगा दिया जाए ताकि उनकी जो गुस्सा है वो आपकी तरफ डायरेक्ट ना हो। आपको याद होगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान टाइप या जो भी स्टेट्स बरतानिया, ताजे बरतानिया की कॉलोनीज होती थी, तो जो एसएचओ होता ना जी, वो हमेशा लोकल आदमी होता था, वो अंग्रेज नहीं होता था, ताकि सबको जो गुस्सा आता है ताजे बरतानिया के कानून के खिलाफ वो इंटरनली डायरेक्टेड हो। बादशाह सलामत बीच में आके कभी कभी कहते थे नहीं नहीं ये वाकई बड़ा खबीस आदमी है, इसको मैं सस्पेंड कर रहा हूं, और फिर लोग कहते थे कि बादशाह सलामत तो बड़ा अच्छा आदमी है, नहीं ये असल में ये जो लोग हैं हमारे अपने लोग ठीक नहीं। सो मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं। देखिये इस वक्त आप चाइना को ब्लेम कर रहे हैं, सबके साथ, प्रेसिडेंट ट्रंप समेत, कि जी चीन हमारी फैक्ट्रियां ले गया, हमारी इंडस्ट्री ले गया, हमारा फलाना किया, तो हम चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग वापस ला रहे हैं और हम चीन पे टैरिफ लगा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कोई पूछने को तैयार नहीं है कि भैया चीन आपके मुल्क में आया था और चीन ने आके यहां से फैक्ट्री उठाई थी, चीन कौन सा चीनी था जो आया था जिसने यहां से आपकी फैक्ट्री उठाई थी और लोगों को नौकरियों से निकाल दिया था और वो फैक्ट्री उठा के चाइना ले गया था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। चाइना आपकी फैक्ट्री नहीं लेके गया। आपका जो अरबापति बिलियनर था, जो आज आपकी ने खुद इलेक्ट किया हुआ, उसी की फैक्ट्री थी और उसका आपके अमेरिका से कोई लॉयल्टी नहीं है। उसने जब आपको एक्सप्लॉयट कर चुका आपकी लेबर को, तो उसने सोचा कि मैं चीन की लेबर को एक्सप्लॉयट करूं और मजीद कम कीमतों पे और अपने प्रॉफिट मार्जिन मजीद बढ़ाऊं। तो उसने जो अपनी फैक्ट्री अमेरिका में लगी हुई थी, उस अमेरिकी बिलियनर ने अपनी फैक्ट्री उठा के जाके चीन में लगाई, क्योंकि चीनी को वो ज्यादा एक्सप्लॉयट कर सकता था, कम वेजेस दे रहा था। अमरीकी जितने अनएम्प्लॉयड हुए उसको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं था कि मैं अमरीकियों को अनएम्प्लॉयड कर रहा हूं, क्योंकि ना वो अमरीका में टैक्स देता है ना वो चाइना को टैक्स देता है। वो तो मनी को अपनी ट्रांसफर करता है, ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे हम हमेशा से कहते हैं कॉरपोरेशन करती है, और ऐसे मुल्क में वो थोड़े बहुत प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा जहां पर टैक्स रेट मिनिमम होगा। सो द लॉयल्टी ऑफ द बिलियनर इज टू नो कंट्री and most of them are Americans and you have elected them and most of them are controlling you today. It's the biggest oligarchy in the country's history in the United States. Lekin agar awam ye samajhne ke kabil hoti, wo jo Mehdi ke ghere baithe the, agar wo ye samajhne ke kabil hote to phir to aaj ye surat-e-haal hi na hoti. Aur wo jo billionaire hai जो इन सारी कंपनीज को CNN को भी और BBC को भी और इन सबको कंट्रोल करता है, वो तो कंटिन्यूसली इन जाहिलों को यही पढ़ा रहा है ना कि भैया ये हमारी तरफ ना देखना, ये सारा कसूर इमिग्रेंट का है। सो यू हैव टू डायरेक्ट दैट एंगर टुवर्ड्स समथिंग एल्स। सो और आज भी जब आप कहें कि ये प्रॉब्लम आपकी कैपिटलिज्म का है, जो ये इनकम डिस्पैरिटी है, this is not the problem of either the immigrant or any other country, it is your capitalism, the system of capitalism, jo ke gareeb ko gareeb tar aur ameer ko ameer tar kar raha hai. Lekin jaise hi aap ye baat kahenge to aapko sabse badi gaali di jayegi ki tum communist ho, theek hai ji. मुझे ये बताइए कि एक ऐसा सिस्टम जो कि मुल्क की रिसोर्सेज को बराबर मैक्सिमम बराबरी की एक्सटेंट तक शेयर करना चाहता हो, वो सिस्टम ज्यादा बेहतर है या एक ऐसा सिस्टम जो कहता हो कि गरीब को गरीब तर होने दो और अमीर को अमीर तर होने दो, वो ज्यादा बेहतर है? लेकिन मसला ये है कि आपके मीडिया ने जो कंट्रोल्स हैं, काले को सफेद कहना और सफेद को काला कहना, असल दुश्मन पे फोकस न होने देना और गलत दुश्मन पे एंगर डायरेक्ट करना, ये आपके पहली तो बात ये है जहां से आपने बात की। फिर वो जो चर्च पे वो गाने वाली बात है, यस, आप देखें कि उस पर काफी सारी रिजेंटमेंट है, सोशल मीडिया पे भी है, इधर उधर है कि जी ये हम चर्च जा रहे हैं तो हमारा राइट टू गो टू चर्च खराब किया जा रहा है, हम तो यहां पे गाते थे और हम यहां पर काम करते थे। लेकिन वो क्या प्रोफेस क्या कर रहा है? अब जो बात मैंने अभी कही कैपिटलिज्म के बारे में, इस पे तो आप बात नहीं कर सकते। अगर वो ये जाके चर्च पे गा रहा होगा तो आप सबसे पहले उसको रोकेंगे, आप कहेंगे ये तो कम्युनिस्ट है। लेकिन अगर वो चर्च पे जाके ये गलत बात गा रहा होगा जो कि जी ये सारे इमिग्रेंट्स गधे हैं या और बेसिकली वो हेट्रेड का पैगाम है, वो व्हाइट सुप्रीमेसी का पैगाम है, तो उसको जाहिर है आप सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि वो आज की दुनिया ऐसी है। बेसिकली मैं तो सोच रहा था कि हम कनेडियन इकोनॉमी और अमरीकी सब्जेक्ट पे डील करेंगे, बट आई थिंक इट्स अ वेरी 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 रिलेवेंट सब्जेक्ट दैट यू पिक्ड अप। इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अवर लाइव्स, योर लाइव्स, माय लाइफ, जितना आपका उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस है और उसमें भले वो हिंदी स्पीकिंग हो, अगर वो इंडियंस हो या पाकिस्तानी हो जो साउथ एशियन कम्युनिटी है। और देखिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है, यूके में पाकिस्तानियों को गालियां देना और रेस हेट्रेड शुरू करने में सबसे आगे आगे कौन थे, वो स्वेला क्या नाम है, ब्रेवरमैन, ठीक है जी, और वो खुद ब्राउन है, और जो उनका प्राइम मिनिस्टर था वो जो पिछला वाला, और वो खुद ब्राउन है, ठीक है जी। अभी तो जो प्राइम मिनिस्टर आपको पता ही होगा उसकी क्या एथनिसिटी है यूके के, लेकिन मसला ये है कि सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों से नफरत करने वाले इंडियंस होंगे और इंडियंस से नफरत करने वाले पाकिस्तानी होंगे, और ये दोनों ये रियलाइज नहीं करते कि आप इंडियन रॉन्ग, भले आप पाकिस्तानी, गोरा आपको मारेगा जब उसको मौका मिले।
बहुत शुक्रिया। मैं सर जी, मैं आई एम सो सॉरी, मुझे पता है कि इकोनॉमी की बात होनी चाहिए, आज ट्रेड डील साइन, दीज आर मॉरल्स। ये जो शान फिशर की भी मैं अगर बात कर रही हूँ, तो मैं बल्कि इसका मैंने आमिर को पिक्चर भी भेजी है, ये इलेक्शन के लिए भी लड़ा था, ही अनसक्सेसफुली रैन फॉर द कांग्रेस इन 2020 एज अ रिपब्लिकन कैंडिडेट, हैवी रिपब्लिकन, राइटिस्ट पार्टी आ गई इन कैलिफोर्निया एंड हैज फेस्ड क्रिटिसिज्म फॉर स्पीकिंग आउट अगेंस्ट अबॉर्शन राइट्स एंड LGBTQ। अच्छा, अब मेरा मसला ये है कि वो कहते हैं कि भाई तू अमेरिका जाके अमेरिका के चर्चों के बीच में ये कुछ कर रहे, तो कनाडा क्यों खराब करने आ गया है? अब वो यहां पे रिफ्ट कर रहा है, आपको पता है अल्बर्टा की रिफ्ट ऑलरेडी चल रही है कि अल्बर्टन महसूस करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ने अल्बर्टा को केयर नहीं किया, और क्यूबैक के बाद अब एक दफा फिर से वो चाहते हैं कि वी वॉन्ट टू सेपरेट। ये जो शॉन फिशेट है ये कैनेडा में आके कर रहा है, अब वो चर्च के दरमियान और आम लोगों के दरमियान एक रिफ्ट, आज CBC की बहुत बड़ी कवरेज है इस पे सर।
अब देखें, आपको याद है कि यूके में एक सिंगर ने जो टर्म यूज की थी, अब मैं नहीं, आपके चैनल की सेंसिटिविटीज की वजह से वो टर्म यूज नहीं करता, उसके तमाम दुनिया में कॉन्सर्ट कैंसिल कर दिए गए, आप समझ गए। तो उस पे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, किसी मेन स्ट्रीम चैनल को कोई तकलीफ नहीं थी, ठीक है जी। सो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात नहीं है, मसला यह है कि आपको उस एक्सप्रेशन से तकलीफ है, वो जब तक आप यू आर फ्री टू से एनीथिंग एज लॉन्ग एज इट सपोर्ट्स योर व्यू। एनीबडी हुज, मैं पहले ही आपको कहा कि जी बड़ा संगीन मुजरम है ये आका, इसे मसलूब ही करना पड़ेगा कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ। सो मसला किसी भी, आप इस आर्ग्यूमेंट को कहीं से भी आके पकड़ेंगे तो मसला सोच के इख्तलाफ का है, मसला किसी प्रिंसिपल का नहीं।
चलिए, सोच के इख्तलाफ का, जब हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते थे, तीसरी दुनिया में लॉलेसनेस का तस्करा बड़ा कॉमन किया जाता है, हम पाकिस्तान की जुडिशरी का जिक्र करते हैं, हम कहते हैं 142 में 139 137 के ऊपर चली फिर रही है। जेम्स कॉमी के साथ आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की मुखासमत भी है, उनका झगड़ा उनके साथ चल रहा है, क्योंकि जेम्स कॉमी ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें उनके इलेक्शन में 2018 का जो इलेक्शन था उसमें रशिया की मदाखलत के बारे में इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दिल में बिठा लिया। और आपको पता ही है जेम्स कॉमी पे पहले भी मुश्किल वक्त रहा, और अब जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं अगेन ही इज अंडर हॉट वाटर। उनकी बेटी जो है, उनकी बेटी मॉरीन कॉमी, वो अमेरिका की अटॉर्नी के ऑफिस से उसको कॉल, वेरी एग्जेक्टिव पोजीशन के ऊपर थी, एंड शी गॉट अ लेटर फ्रॉम कि शी इज फायर्ड। अब उसने अपने तमाम के तमाम, ये मॉरीन कॉमी जेम्स कॉमी की बेटी है, टर्मिनेटेड इन दिस वीक वाया लेटर, दे डिड नॉट इवन गिव हर द इन्फॉर्मेशन कि व्हाट वाज द रीजन। पैम बॉन्डी की अगर आप बात करते हैं तो आप देखिएगा कि वो हर गलत फैसले को, अगेन ये मैं नहीं कह रही, ये पूरा का पूरा इट्स अ फैक्ट कि जो भी फैसला होता है उसको चैलेंज करके सही रास्ते पे ले आया जाता है। अब ये जो मॉरीन कॉमी है, इन्होंने अपनी तमाम के तमाम लोगों को, तो फिर आमिर अगर लगाएं तो मैं उसकी एक लाइन को पढ़ना चाहती हूँ, बड़ी पंच लाइन है इसमें, उसमें कह रहे हैं एवरी पर्सन लकी इनफ टू वर्क इन दिस ऑफिस कॉन्स्टेंटली हियर्स फोर वर्ड्स टू डिस्क्राइब आर एथोस, यानी फायर, FIRE, फायर। फॉर द मेजोरिटी ऑफ माई नियरली 10 years, fear was never really कंसीवेबल, बड़ी कमाल की बात लिखी है, इसको अगर हाईलाइट कर लें, फॉर द मेजोरिटी ऑफ माई नियरली 10 years इन जो स्टेट्स डिपार्टमेंट में, फियर वॉज नेवर रियली कंसीवेबल, वी डोंट फियर बैड प्रेस, वी हैव द लग्जरी ऑफ एक्सेप्शनल सिक्योरिटी, कीपिंग एज फिजिकली सेफ एज लॉन्ग एज वी डिड आर वर्क विद इंटेग्रिटी, वी वुड गेट टू कीप सर्विंग द पब्लिक इन द ऑफिस, आर फोकस वॉज रियली ऑन एक्टिंग विदाउट फेवर, दैट इज मेकिंग श्योर पीपल विद द एक्सेस मनी पावर वर नॉट ट्रीटेड डिफरेंटली देन एनी वनी एल्स, एंड मेकिंग श्योर दिस ऑफिस रिमेन सेपरेट फ्रॉम द पॉलिटिक्स एंड फोकस्ड ओनली ऑन द फैक्ट्स इन द लॉ, but we have entered a new phase where without fear may be the challenge. Iska matlab hai ki any career jo prosecutor hai can be fired because the billionaire doesn't like it and there is a fear. Isme ek aur line badi khoobsurat thi ki hamesha fear ko so kiya jata hai to divide the people. तो अब आप क्या फरमाएंगे कि if the first world country, और इसके साथ साथ आमिर वो भी एक दिखा दीजिएगा, दिस इज अमेरिका. अभी जब हम रेसिज्म की बात कर रहे हैं तो आई डिड टॉक अबाउट अमेरिका कि जर्मनी फ्रांस एंड बर्तानिया, वो कहते हैं कि द फियर ट्रेवल्ड, ये जो रेसिज्म की प्रॉब्लम है ट्रेवल्ड फ्रॉम अमेरिका टू दीज कंट्रीज. डोनाल्ड ट्रम्प वॉज इन स्कॉटलैंड, ये बड़ी फनी खबर है और मैं चाहती हूं कि मैं आपको दिखा, क्योंकि आई डिड नॉट टेल यू अबाउट दिस. डोनाल्ड ट्रम्प वॉज इन स्कॉटलैंड, लेकिन जी वो गोल्फ खेलते हैं, उनका अपना मार-अ-लागो में आपको पता ही है, जो अक्सर जब बॉल को हिट किया जाता है तो बॉल बाज़ुकात पानी में भी गिर जाती है, दैट इज द ओनली स्टेज जबकि बॉल को आप अपनी मर्जी की जगह के ऊपर रख सकते हैं. कि देखिए डोनाल्ड ट्रम्प के साथ दो आदमी हैं, इन्होंने चीट किया है और आज प्रेस ने इसको रिपोर्ट किया है. ये बॉल उसने गिराई, यानी डोनाल्ड ट्रम्प की बॉल को बहाने बहाने से वो ढूंढ रहे थे, बट हिडन एक आदमी तस्वीर बना रहा था, ये बॉल गिराई उसने. Any the cheating by the president with the help of people around him, and this is happening in Pakistan also, sir. It is happening in Pakistan, but of course, agar America mein ho sakti hai, to dunia mein har jagah ho sakti hai. What would you say?
Asal mein, aap
mujhe confused.
Sir, allow me to say, aap shuru Lahore se hain the, aap panch chudka mein gayi
hain. Dono ke connectivity mein. Main shuru Lahore se hui thi, main Chiburji isliye panch gayi, ya main Chandu Khan isliye panch gayi, because these are the role models who people follow. चंडू खाने के लोग दे फॉलो अमेरिका, कपड़े उतारने के लिहाज से, फैशन के लिहाज से, ब्रांड्स के इस्तेमाल से, गाड़ियों के इस्तेमाल से, दे फॉलो अमेरिका.
बेवकूफी है ना जी. देखें, अगर आप लोगों ने, अगर लोगों ने सोचना नहीं है तो फिर ऐसा ही होगा ना. क्या ऐड था, दूध नहीं पिएगा तो ऐसे ही. देखिए, जो आपने पहली बात शुरू की, इट वॉज एक्चुअली अ फैंटास्टिक थिंग एंड वी नीड टू थिंक अ लिटिल बिट अबाउट दिस. नॉट अ लिटिल बिट, वी हैव टू कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दिस. जो हम ये अगर ये कह रहे हैं कि अमेरिका में रूल ऑफ लॉ था, अमेरिका में बड़े आदमी और छोटे आदमी में बराबरी थी और फलाना था, ये रियलिटी में एब्सोल्युटली गलत है. आई विल जस्ट प्रूव इट टू यू इन द कमिंग 3 to 5 minutes. देखिए, अब अगर मैं कहूं ना कि जी पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज और इंडिया की सिविल सर्विसेज, नेपाल की सिविल सर्विसेज बेस्ट है, तो सब लोग मुझे कहेंगे यार ये देखे ना, ये सिविल सर्वेंट था तो ये हराम खोर है और ये पता नहीं ऐसी बातें करता है, सिविल सर्विसेज तो वहां की ठीक नहीं है. अच्छा, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं. आप पाकिस्तान में ये जो खातून है जिनको एक लेटर लिख के निकाल दिया गया, आप पाकिस्तान में एक छोटे से ग्रेड 12 के अफसर को इस तरह लेटर लिख के निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते. ग्रेड 11, ग्रेड 9, ग्रेड 8 नहीं निकाल सकते. आपको उसको बताना पड़ेगा कि भैया तुम्हें हम क्यों निकाल रहे हैं, उसे शो कॉज देना पड़ेगा, या आपके मुल्क के कानून में, आपके मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में, आपके मुल्क के एस्टा कोड में लिखा हुआ है कि अगर वो सरकार का एक मुलाजिम है तो आपको उसको बताना पड़ेगा, शो कॉज नोटिस आप देंगे, उसको आप टाइम देंगे, वो उस शो कॉज नोटिस का जवाब देगा, उस पर इंक्वायरी अफसर बैठेगा, वो उसके जवाब को देखेगा और उस पे जो चार्जेस हैं वो देखेगा, और उसके बाद वो फिर उस पे जो भी एक फैसला देगा वो फैसला फिर अपीलेबल अदालतों में होगा, और अगर ये बात साबित हो जाती है कि उसने वाकई ही वो हरकतें की हैं तो फिर आप उसको नौकरी से डिसमिस कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में कभी भी ऐसा नहीं था। अमेरिका में आप किसी आदमी को भी खड़े खड़े, क्योंकि आपकी जो कैपिटलिज्म का निजाम है और जो ये पूरा थॉट ऑफ डोज था कि जी जो 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 सिविल सर्विसेज है, या जो सिविल सर्विसेज एज अ लार्जर गवर्नमेंट सर्विस के लिहाज से, इसके इसका वही प्रिंसिपल है जो वो इक्वेट करते हैं जैसे कॉरपोरेशन का। कॉरपोरेशन में आप किसी भी बंदे को खड़े खड़े एक हफ्ते की, दो हफ्ते की मैक्सिमम तनख्वाह देंगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। कैनेडा में भी ये लॉ है कि आपने सिर्फ दो हफ्ते की अगर किसी को तनख्वाह दे दी तो थैंक यू सो मच, आप उसे कह सकते हैं कि आप जाएं, कोई इसमें आपको उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कोई शो कॉज नोटिस देने की जरूरत। अच्छा, अब इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे फर्क ये पड़ता है कि अगर मैं एक पुलिस वाला हूं, मैं मैजिस्ट्रेट हूं, मैं कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करता हूं, तो पब्लिक ऑफिस होल्डर का मकसद ये है कि वो विदाउट फियर और फेवर, एग्जैक्टली जो ये खातून बात कर रही है, वो विदाउट फियर और फेवर ताकतवर आदमी और कमजोर आदमी पे बराबर का ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है जी, अब आप ये कहेंगे कि पाकिस्तान में भी बराबर की ट्रीटमेंट तो नहीं होती, जो मर्सिडीज वाला है उसको पुलिस वाला सलूट मारता है, और जो बेचारा मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा उससे वो रिश्वतें मांगेगा, उसे मारेगा भी, उसे थप्पड़ भी मारेगा, सब कुछ कहेगा, तो मैं किस तरह का बेवकूफ इंसान हूं जो ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान का निजाम बेहतर है और इनका निजाम कभी भी ठीक नहीं था। अच्छा, उसकी मैं वजूहात पे अलग आता हूं, लेकिन अमेरिका में हमेशा से आप किसी को भी इस तरह निकाल सकते थे। तो इन हालात में पुलिस वाला अगर किसी पावरफुल आदमी को रोकेगा तो वो उसको नौकरी से निकाल सकता है। ये जो खातून है, अब जरा आप इसके पीछे जाए, मॉरी जो कौमी है, इसका मॉरिस कौमी है खातून, मेरे ख्याल ये इनकी डिपार्टमेंट ऑफ
मॉरी कौमी, जेम्स कौमी जो सीआईए के डायरेक्टर थे, उनकी बेटी है।
जी बिल्कुल, लेकिन ये उस रिलेशनशिप की वजह से इनको नहीं निकाला जा रहा। ये अभी आप आगे चलेंगी तो आपको मजीद इस पर क्लैरिटी आएगी। ये प्रोसिक्यूटर थी गिलेन मैक्सवेल की, जो के क्या नाम है, एपस्टीन का की जो 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 पार्टनर थी, जो कि 20 साल के लिए अंदर है, जिससे अभी जाके ये सारे मिले हैं, और खबरें नीचे ये चल रही हैं कि 20 साल से, क्योंकि उसको तो सारा पता ना उसका, तो ये उसकी प्रोसिक्यूटर थे, और इसको जितना उस केस के बारे में पता है कि एपस्टीन किस किस चीज में इन्वॉल्व था, और इसने चूंकि उसको प्रोसिक्यूट किया था 20 साल की सजा दिलवाने में, ये आगे आगे है। तो बेसिकली इस वक्त जो अंडर करंट है वो ये चल रहा है,
एपस्टीन है अंडर करंट,
एपस्टीन है, और उस औरत को आपने रिलीफ देनी है। अब पाकिस्तान में इस लेवल के शख्स को आप इस तरह खड़े खड़े लेटर दे के नहीं निकाल सकते, जिसकी मर्जी हुकूमत तो नहीं है।
जी माज, यही तो मैं आपसे कह रही हूँ कि अमेरिका में भी इट वॉज नॉट पॉसिबल, यू हैड टू गिव, दिस इज द फर्स्ट ट्रम्प वन एंड ट्रम्प टू में जो चेंज आया है, दैट नोबडी इज सेफ हियर।
एक्चुअली नो, एक्चुअली नो, देखें अमरीकी कानून में उस तरह का शो कॉज नोटिस देने, कैनेडियन कानून में भी, और उस तरह इंक्वायरी होने और उसकी रिस्पॉन्स आने का कानूनन कोई जगह नहीं है। देखें वो तो सारी बातें इखलाकन थी ना, कानूनन क्यों मैं कहता हूं कि पाकिस्तान और इंडिया और नेपाल की सिविल सर्विसेज ज्यादा बेहतर है। वो तो अगर पर्सनली वो एक काम ठीक नहीं कर रहे तो वो अलग है, लेकिन कानूनन वो स्ट्रक्चर मच बेटर है। कि इनके स्ट्रक्चरल ये डिफेक्ट हैं, और ये स्ट्रक्चरल डिफेक्ट क्यों रखा गया है, जानबूझ के यू कैन एक्चुअली लीगली फायर हर, एंड दे हैव लीगली फायर्ड सो मेनी पीपल विदाउट गिविंग देम अ शो कॉज नोटिस, बिकॉज इट इज नॉट इन देयर लॉ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। इट इज नॉट कि ये ट्रंप ने आके कर दिया. अगर ये सिर्फ ट्रंप कर रहा होता तो दिस कुड बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. दिस लेडी शी कैन नॉट चैलेंज इट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज देयर लॉ दे डोंट हैव एन एस्टैब्लिशमेंट कोड. जो पाकिस्तान इंडिया नेपाल जिस तरह की मैं बातें कर रहा हूं उन कंट्रीज में वो उन्होंने इनहेरिट किया है ब्रिटिश सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर जिसमें ये सारी चीजें थी. अमेरिका कनाडा नॉर्थ अमेरिका की जितनी कंट्रीज हैं इन्होंने वो स्ट्रक्चर इनहेरिट ही नहीं किया तो इनके कानून में नहीं है. दिस कुड ऑलवेज बी डन एंड हेंस अ पावरफुल मैन इन यूएस एंड कनाडा वाज ऑलवेज अ वेरी पावरफुल मैन एंड कुड गेट एनीथिंग डन बिकॉज जॉब सिक्योरिटी फॉर योर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैज नेवर बीन देयर.
बहुत शुक्रिया. और सर मैंने इसीलिए आपने कहा ना था कि मैं लाहौर से चली और काना काछा जाके रुकी थी क्योंकि दिस इज व्हाट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका दैट कैन फायर एनीबॉडी ही कैन पुट पी टैक्सिट एट द पोजीशन वेयर ही कैन पुट एनीबॉडी हु वांट्स उसको सामने भी ला सकता है उसको एलिमिनेट भी कर सकता है. और अपने तौर पे द रोल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड जो कहता है कि दो हफ्ते के बीच में रशिया की जंग बंद होनी चाहिए वो गोल्फ खेलता है तो बॉल तक वो वहां जो गोल्फ की है वो भी चोरी से गलत बेईमानी से रखता है.
अच्छा और बहुत शुक्रिया. देखें ये अब अमरीकियों को आहिस्ता आहिस्ता समझ
नहीं आएगी सर यही तो है वो जो